ऐतिहासिक स्पष्टीकरण। 17वीं शताब्दी की आर्थिक मंदी के कारणों पर इतिहासकारों में जो विवाद हुआ है, उनके प्रमुख विचारों की हम यहाँ चर्चा करेंगे, परंतु इनके विश्लेषण में हम 17वीं शताब्दी की समस्याओं तक सीमित न रहकर आर्थिक विकास अथवा पूंजीवाद के आम मुद्दे भी उठाना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, मूल्यों का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव हमें केवल 17वीं शताब्दी के संदर्भ में ही नहीं देखेंगे, अपितु ऐसे सवाल भी उठाएंगे कि क्या हर ऐतिहासिक ढांचे में मूल्यों का उत्पादन पर समान प्रभाव होता है, और होता है तो क्यों और कैसे। इतिहासकारों के विचारों को तीन प्रमुख वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, वह जो मूल्यों में गिरावट को आर्थिक मंदी का कारण मानते हैं, यह ई.जे. हैमिल्टन का मत है। दूसरा, आर्थिक व्यवस्था पर जनसंख्या के प्रभाव को प्रमुख मानता है। तीसरा, वह जिनके विचार में अर्थव्यवस्था पर मूल्य अथवा जनसंख्या का प्रभाव जानने के लिए ये आंकड़े उत्पादन की सारी प्रक्रिया के संदर्भ में रखने होंगे। यह इसलिए क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा किसी न किसी आर्थिक क्रम के चक्र में पाया जाता है, कभी स्वतंत्र कृषक के रूप में, कभी बंधुआ मजदूर, और कभी वेतन पाने वाले कामगार के रूप में। इसी कम क्रम से उसके और वर्गों से सामाजिक रिश्ते भी स्थापित होते हैं, अर्थात राजनीतिक सत्ता के बल पर ऐंठते हुए अभिजात वर्ग के साथ जमीन के मालिक होने के नाते जमींदार के संग, या उत्पादन की वस्तुएं समेटे हुए पूंजीपति के साथ जो उसकी श्रम शक्ति खरीदता है, इन्हीं सामाजिक आर्थिक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से तय होता है कि समाज में मांग का स्तर और स्वरूप क्या होगा। अर्थात कहाँ तक स्वयं के उत्पादन से पूर्ति न होकर औरों की बनाई वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ेगी, और क्या औरों की बनी वस्तुएं भेंट कर या विक्रय जिंसों के रूप में प्राप्त की जाएगी। इन इतिहासकारों के विचार में पूंजीवाद के अंदर एक अधिक मांग बढ़ती है, क्योंकि उससे अधिक कम तथा श्रमिकों को बनाए रखने के लिए औरों की बनाई वस्तुएं हर समय खरीदनी पड़ती है। ये बातें आगे विस्तार से समझाई जाएंगी। यहाँ हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया के बदलने से ही मांग और उत्पादन में वृद्धि होती है, केवल जनसंख्या या मूल्यों के बदलाव से नहीं। इतिहास में हम यही पढ़ते हैं कि इन प्रक्रियाओं में कैसे बदलाव आए और इनके साथ साथ मानवीय और सामाजिक रिश्ते कैसे बदले। 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो आर्थिक मंदी आई, ई जे हैमिल्टन के अनुसार उसका सबसे पहला कारण था स्पेन के माध्यम से दक्षिणी अमेरिका से सोने चांदी के आगमन में कमी आ जाना। सोने चांदी की इस कमी से प्रचलित मुद्रा में भी कमी आ गई और उससे मूल्यों में गिरावट का दौर शुरू हो गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कृषि और शिल्प में पैसा लगाना लाभदायक नहीं रहा। उसके इस तर्क से तो यह लगता है कि 16वीं शताब्दी के यूरोप का आर्थिक विकास तभी जारी रह सकता था जब उसमें निरंतर धन जोड़ा जाता रहता। हैमिल्टन की युक्ति के पीछे मूल धारणा यही है कि जब मूल्य उत्पादन लागत से ज़्यादा होंगे तो निर्माण लाभ देगा और लोगों को पूंजी लगाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आज की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह विचार भले ही सही हो, परंतु 17वीं शताब्दी में ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि जब लाभ हो रहा हो तो भी उत्पादन को बढ़ाना अथवा पूंजी को नई जगहों में लगाया जाना संभव नहीं था। मसलन जमीन का मिलना आसान नहीं था। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा चरागाहों के रूप में गांव की साझी संपत्ति होती थी। कुछ किसानों के पास जमीन विशेष पट्टों पर थी, जिसके कारण उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। एक किसान, विशेषकर पूर्वी यूरोप और फ्रांस का किसान, जमींदारों की अनुमति के बिना स्वयं अपनी भी जमीन बेच नहीं सकता था। न वह उसे पट्टे पर ही दे सकता था। इन जमींदारों को जमीन के बारे में बहुत से अधिकार मिले थे। सबसे बढ़कर कारण यह था कि किसान लोग कम फसल के बावजूद अन्य साधनों से पेट पालन करते हुए भी अपनी जमीन का छोटा से छोटा टुकड़ा भी अपने हाथ में बनाए रखना चाहते थे। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में आसपास के छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े फार्म बनाने का प्रयास क्यों विफल रहा, उसके कुछ कारण यही थे जो ऊपर बताए गए हैं। इन बाधाओं के बावजूद चकबंदी पर रोक न लगाने का मतलब था छोटे किसानों का हिंसा पर उतारू हो जाना। यह कोई भी निरंकुश राजतंत्र करने को राजी नहीं था। इससे भी बड़ी बात यही थी कि श्रमिक आसानी से नहीं मिलते थे। मानवीय श्रम शक्ति अधिकांशतः अपने छोटे और कम उपजाऊ खेतों में अधिक मेहनत कर कामचलाऊ उपज उगाने में लगी हुई थी। इन अक्षम और केवल किसान परिवार की खपत लायक उपज देने वाले खेतों को खत्म करके ही गेहूं के बड़े बड़े फार्मों के लिए श्रमिक जुटाए जा सकते थे। यदि बड़े चकबंदी खेत या हथकरघे खड़े कर भी दिए जाएं, तो वे बिना श्रमिकों के न तो उत्पादन कर पाएंगे और न ही अपने मालिकों के लिए मुनाफा कमा पाएंगे। इससे मार्क्स की भावी पूंजीपति वाली कहानी याद हो जाती है। वह इंग्लैंड से अपनी मशीनें और श्रमिक लेकर अमेरिका गया, परंतु उसके सारे श्रमिक अमेरिकी सीमांत क्षेत्र में खेती करने के लिए भाग गए और उसकी मशीनें बेकार हो गईं। पूंजीपति को पता चला कि पूंजी उत्पादन सिर्फ तकनीकी साधन नहीं अपितु सामाजिक संबंध है जो दो वर्गों के बीच स्थापित किया जाता है। एक ओर उत्पादन के यंत्र का मालिक पूंजीपति और दूसरी ओर श्रमिक वर्ग जिसके पास स्वयं पेट भरने के लिए कोई उत्पादन के साधन नहीं हैं। जब तक जमीन और श्रमिक इन क्षुद्र उत्पादन चक्रों में उलझे रहे, तब तक मूल्यों का उत्पादन या उसके विकास पर प्रभाव बहुत सीमित रहा। उत्पादन की वृद्धि में इन बाधाओं को देखते हुए सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी स्थिति का लाभ उठाया और तत्कालीन मौजूदा उत्पादन में ही डंडे के जोर पर अपना हिस्सा खूब बढ़ा लिया। 16वीं शताब्दी के फ्रांस में राजतंत्र के लोग जब जमीनों को मिलाकर बड़े फार्म बनाने में विफल रहे, तब उन्होंने जमीनों का लगान बढ़ा दिया तथा मोर्टमैन और वैनालाइट्स जैसे परंपरागत सामंती शुल्क फिर से लगा दिए। 17वीं शताब्दी में हंगरी में भी इसी प्रकार सामंती शुल्क बढ़ा दिए गए। किसान के इस तरह शोषण ने उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसे वह अपनी पैदावार बढ़ाने में या जमीन की स्थिति सुधारने में खर्च कर सकते। पोलैंड के उदाहरण से इस युक्ति को और बल मिलता है। हम जानते हैं कि पोलैंड के जागीरदारों ने छोटे छोटे स्वतंत्र किसानों से डंडे के बल पर अपने फार्मों में काम कराया, परंतु ये छोटे किसान अपने लिए जो कुछ उगाना चाहते थे वह न उगा पाने तथा जबरदस्ती के काम में मन न लगाने के कारण उपज उतनी नहीं कर पाए जितनी जमीन थी। इसी कारण पोलैंड के बड़े बड़े फार्मों के ये स्वामी 16वीं शताब्दी में अनाज की कीमतों में हुई भारी वृद्धि का कोई लाभ नहीं उठा सके। बिटोल्ड कूला ने स्पष्ट किया है कि 16वीं शताब्दी के समूचे व्यापार प्रधान दौर में भी पोलैंड के गेहूं के दाम संभावित मूल्यों और लाभ को ध्यान में रख कर नहीं अपितु उपज की मात्रा को देख कर तय होते थे। इसका मतलब है कि अधिक मूल्य मिलने का पूरी संभावना होते हुए भी पोलैंड के तत्कालीन 16वीं सदी के राजनीतिक व आर्थिक ढांचे के कारण उस देश के जमींदार अपनी उपज नहीं बढ़ा पाए। बढ़ते मूल्यों का उत्पादन पर असर केवल पूंजीवाद में ही होता है, जहां उत्पादन के कारक जिन्सों के रूप में आसानी से उपलब्ध हैं और पैसे से खरीदे जा सकते हैं तथा किसी भी आकार प्रकार में संगठित किए जा सकते हैं। आज की स्थिति को देखकर बनाई गई कोई भी धारणा पूंजीवाद से पहले के उस काल के बारे में व्यक्त नहीं की जा सकती। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर अन्य इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि 17वीं शताब्दी के संकटों को समझने के लिए तत्कालीन यूरोप की आंतरिक स्थिति का अध्ययन जरूरी है। एफ ब्रैडले और ली राय लाडुरी जैसे अनालिस्ट संप्रदाय के इतिहासकारों ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक उन्नति और औन्नति का चक्र उन समाजों में प्राकृतिक शक्तियों की भूमिका पर निर्भर करता है जो तकनीकी दृष्टि से उन्नति करने में विफल रहती हैं। उन्होंने ऐसे समाजों को कृषि आधारित राज्य कहा है। रोग जमीन की उर्वरा शक्ति, जैविक कारक और जलवायु में परिवर्तन ऐसे प्राकृतिक शक्तियां हैं जो उक्त समाजों में जनसंख्या के स्वरूप का निर्धारण करती हैं। जनसंख्या अनाज और शिल्प की मांग तय करती हैं। इस प्रकार बढ़ते हुए मूल्य, अधिक किराए, ज़्यादा निवेश जैसे आर्थिक परिवर्तन बढ़ती जनसंख्या के कारण समझे जाने चाहिए। इन इतिहासकारों का कहना है कि कृषि आधारित राज्यों में जनसंख्या दीर्घकालीन विकास और अपकर्ष के चक्र पर निर्भर करेगी। यूरोप के लिए 9वीं और 10वीं शताब्दी प्रसार का तथा 11वीं और 12वीं शताब्दी संकट का काल थी। फिर 13वीं सदी में सुधार और विकास का काल आया तो 14वीं और 15वीं में सदी मंदी का युग रहा। 16वीं और 17वीं शताब्दियां इस सुधार और मंदी के दोहरे चक्र का अंतिम काल थी। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक सुधार और मंदी के ये चक्र जनसंख्या में वृद्धि के साथ कैसे आते हैं। कृषि आधारित राज्यों में तकनीकी ठहराव के कारण बढ़ती जनसंख्या के लिए फालतू अनाज अधिक जमीन पर खेती से ही पैदा हो सकता है। नई जमीन पर हल चलाने से जंगल या चरागाहों का नाश होता है जो कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का आधार है। फिर जहां भूमि मिलनी बंद हुई, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास शुरू हो जाता है। विशेषतः छोटे टुकड़ों में बटी जमीन में यह जल्दी होता है। ऐसी जमीन में फसल चक्र को छोटा करके हर बार ज़्यादा से ज़्यादा जमीन में बुआई की कोशिश की जाती है ताकि अधिक से अधिक फसल प्राप्त की जा सके। परंतु अंततः इसका परिणाम यह होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति ही नष्ट हो जाती है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या का मतलब होता है खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, संसाधनों व जमीन का चुक जाना, उपज में कमी होना, अकाल की स्थिति पैदा होना, लोगों का मरना तथा अंततः आर्थिक जीवन का विस्तार रुक जाना। इन इतिहासकारों की राय में 17वीं शताब्दी का संकट सामंतवादी कृषि आधारित यूरोप का अंतिम जनसंहारक संकट था। 18वीं शताब्दी में तकनीकी ठहराव खत्म होकर नया युग शुरू हुआ जिसमें कृषि की नई तकनीकें अपनाई गईं। इनसे अनाज की पैदावार में भारी वृद्धि हुई और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति लाने वाली महत्वपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ। पूंजीवाद से पूर्व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के जगत में इस चक्रीय हलचल को स्पष्ट करके इन इतिहासकारों ने यह समझने में सहायता की है कि हर क्षेत्र के आंतरिक स्वरूप में अंतर होते हुए भी यूरोप के सभी हिस्सों में कुछ हद तक एक समान आर्थिक लहर कैसे फैली, जिसे हम 16वीं शताब्दी के विस्तार और 17वीं शताब्दी के सामान्य संकट के नाम से पहचानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें क्रमबद्ध आर्थिक उतार चढ़ाव, आर्थिक लय की बात करनी चाहिए, ढांचे की नहीं। यूरोप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर चीज़ एक संकेत पर काम नहीं कर रही थी। इसके विपरीत हर आवेग इस आर्थिक लय से संबंध था। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत हद तक कृषि उत्पादन पर निर्भर थी। ऐसी हलचलें यूरोप भर में तुरंत असर करती थी, परंतु हर क्षेत्र में अपने इतिहास और विशेष स्थिति के अनुसार ही उसकी प्रतिक्रिया होती थी। अलबत्ता यदि हम यह मान लें कि 17वीं शताब्दी केवल 16वीं शताब्दी के विकास की विपरीत स्थिति थी तो कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। फिर किस आधार पर 18वीं शताब्दी में प्रगति हुई? इससे भी बड़ी बात यह है कि तकनीकों में ठहराव का उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। आखिर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के तरीके उत्तरी यूरोप वालों को ज्ञात थे तथा इंग्लैंड, नीदरलैंड और उत्तरी फ्रांस के कुछ भागों में इन्हें सफलतापूर्वक अपनाया भी गया। फिर ये समूचे यूरोप में क्यों नहीं अपनाए गए और 16वीं शताब्दी में फ्रांस के अन्य भागों में इन्हें आजमाने का प्रयास विफल क्यों हो गया? इन जैसे प्रश्नों का उत्तर मार्क्सवादी इतिहासकारों जैसे ई जे हाब्सबॉम, आर ब्रेनर और पी विलार ने देने का प्रयास किया है। उन्होंने उत्पादन के सामंती ढांचे के भीतर विकास की सीमाओं पर विचार किया है। ये सीमाएं हैं सामंती बाजारों की सीमित मांग क्षमता, श्रम और जमीन का लघु कार्यक्रम में जकड़ा होना, उन पर भारी सामंती कर तथा ऐसी स्थिति बनाए रखने में सामंती राज्य की भूमिका। हाब्सबॉम का कहना है कि सामंतवादी व्यवस्था में बाजार से खरीदी जाने वाली चीज़ों यानी जिन्सों की मांग सीमित होती है। तैयार माल तथा अनाज आदि जिन्सों के बड़े बाजार तक तब तक नहीं बनाया जा सका जब तक जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी जीविका के लिए आवश्यक भोजन और कपड़ा जुटाने के लायक भूमि अपने पास रखता था। किसान अपनी उपज का एक भाग बाजार में बेचकर करों, लगान और सामंती शुल्कों की अदायगी कर देता था। यह पैसा वह दूसरों के द्वारा तैयार किए हुए माल को खरीदने में इस्तेमाल नहीं कर पाता था। इस तरह किसान का पैसा राज्य, चर्च और जमींदार ले जाते थे। सामंतवादी व्यवस्था में धन की शक्ति इन्हीं लोगों के हाथ में थी और यही लोग जिस उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराते थे, इसलिए बाजार बहुत सीमित था। उपभोक्ता बहुत कम थे और वे भी विलास सामग्री के थे। जहाँ राजतंत्र के नियमित सेना तथा युद्ध की वजह से धातु तथा वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिलता था, वहाँ इसका यह अनुमान भी था कि कृषि कार्यों में लगे हुए श्रेष्ठ कृषकों को जबरदस्ती सेना में ले लिया जाता था और युद्धों में जन धन के अलावा पशुधन व फसलों का नाश भी होता था। इन तर्कों के आधार पर हाब्सबॉम ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में अपनी खपत और कुछ सीमित बड़े बड़ी वस्तुओं के अलावा और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा संभव नहीं था। इसलिए 17वीं शताब्दी में यूरोप के विकास में गतिरोध आ गया, जिसे संकट कहा जाता है। इस सदी में उत्पादन बढ़ाना लाभदायक नहीं था। पैसा जिन हाथों में था, उन्होंने उसे जमीन की खरीद में, राज दरबार में पद प्राप्त करने में, आलीशान मकान बनाने में तथा लगातार युद्धों की योजनाएं बनाने में खर्च किया। इंग्लैंड और नीदरलैंड इस संकट के अपवाद रहे, क्योंकि 17वीं शताब्दी में इन देशों में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। वहाँ छोटे किसानों को अपने छोटे छोटे खेत छोड़कर बड़े फार्मों में खेतिहर मजदूर बनना पड़ा। साथ ही जींस बाजार खुल गए, क्योंकि पेट भरने के लिए मजदूरी से प्राप्त की गई पगार से दूसरों का बोया हुआ अनाज खरीदना पड़ता और दूसरों का बुना कपड़ा खरीदना पड़ता। इस तरह दोहरा बाजार बन गया, एक तो वह जहाँ रोजमर्रा निर्वाह की चीज़ें मिलती थी और दूसरे रोजमर्रा की खपत की चीज़ें बनाने वालों में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जब होड़ हुई तो ऐसे उपकरण व यंत्र बनाए गए जो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज दें। इस तरह उत्पादन बढ़ाने वाले उपकरण, ढुलाई करने वाले वाहन आदि का दूसरा बाजार बन गया, जिसमें पूंजीपति स्वयं एक दूसरे के माल के खरीदार थे। इसलिए जिन्सों की बढ़ती हुई मांग केवल जनसंख्या वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। अनालेन साहित्यकारों का दृष्टिकोण बल्कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए व्यवसाय पर निर्भर करती है। मसलन जिन्सों के लिए मांग बढ़ाने के लिए पहले छोटे उत्पादकों को उत्पादन के साधन से अलग करके मजदूर बनाना होगा, क्योंकि तभी लोग अपना पेट भरने के लिए जिन्स खरीदने को विवश होते हैं। मांग सामाजिक और स्वामित्व संबंधों के बदलने से उत्पन्न होती है, केवल जनसंख्या बढ़ने से नहीं। कृषि में छोटी जोतों और शिल्प में लघु उत्पादन करने वाले किसानों और निर्माताओं को यूरोप के अधिकांश भागों में समर्थन मिला और वे निम्नलिखित महत्वपूर्ण बोझों से बच गए और इसी कारण पूंजीवाद यहाँ इंग्लैंड की तुलना में पिछड़ गया। किसानों पर पड़ रहे भारी लगान करों और सामंती शुल्कों के बोझ से, इससे धन भूमि व पशुधन किसानों के पास जमा न हो सका, इसलिए किसानों के बीच कोई ऐसा वर्ग न बन सका जो धीरे धीरे सारी जमीन अपने हाथों में संगठित कर ले और स्वयं पूंजी प्रणाली कृषि क्षेत्र में अपनाए। ख सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के दबाव से जिन्होंने कृषकों में आर्थिक समानता और क्षमता को बनाए रखा, इन संस्थाओं में सर्वप्रमुख ग्राम सभा और निरंकुश राजतंत्र इसलिए कृषि और शिल्प का सतत विकास न तो मूल्य वृद्धि और मुनाफा बढ़ने पर निर्भर करता है और न सिर्फ जनसंख्या पर आधारित है, बल्कि यह उत्पादन के स्वरूप को पूंजीवादी स्वरूप में बदलने पर निर्भर करता है। वास्तव में देखा जाए तो यदि एक बार ऐसा हो गया तो मूल्य और उपभोक्ता में वो में स्वतः वृद्धि होती रहेगी। अंत में यह बात समझनी आवश्यक है कि पूंजीवादी प्रणाली की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन के कारक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में आसानी से ढाले जा सकें। ऐसा तब संभव होता है जब छोटे स्वतंत्र कारीगर और छोटे किसान को अपने यंत्र व जमीन से अलग कर दिया जाए। लघु उत्पादन प्रक्रियाएं नष्ट हो जाएं, तभी इनमें लगी हुई श्रम शक्ति और जमीन का नई और ज्यादा उत्पादक प्रक्रियाओं में गठन किया जा सकेगा। इसी आधार पर हम अब 17वीं सदी के यूरोप में पूंजीवादी प्रवृत्तियों का सर्वेक्षण करेंगे। हमारे सामने दो प्रमुख सवाल हैं। पहला, किस हद तक लघु उत्पादक प्रक्रियाएं संकट में समाप्त हो गईं या उसके बावजूद जारी रहीं, ठीक है। दूसरा, इनके समाप्त होने पर पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग कहाँ तक उभर कर आया।